Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shvetashvatara Upanishad, presented by Swami Sri Umeshanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mantra drashtara, mantra ki artha ko janne wala sarvajya rishi hai. Vasishtha sarvajya rishi hai. Vasishtha ji ko sarvajya mante hai. हाँ, वो तो सभी है, अगस्त ऋषि, ब्राह्मण ऋषि, ब्रह्म ऋषियों में आते हैं. हिरण्यगर्भम जनयमास पूर्वम, उसने रुद्र ने क्या किया, कब जनयमास पैदा किया, किसको? हिरण्यगर्भम, हिरण्यम हिरण्यम सुवर्णम गर्भम, जो हिरण्य माने सुवर्ण, हितम हिरण्यम सुवर्णम ज्योतिर्मयम, जो गर्भ में रह करके जो प्रकाश स्वरूप होता है ना, हितम हिरण्यम सुवर्णम. हिरण्य गर्भ किसको है? सूत्रात्मा, सूत्रात्मा को कहते. सूत्रात्मा है ना, सूक्ष्म शरीर के जो अभिमानी, समस्ती सूक्ष्म शरीर के जो अभिमानी चेतना है उसको हिरण्य गर्भ कहते हैं. उसको कहते हैं सूत्रात्मा. हिरण्य गर्भ कहो, सूत्रात्मा कहो, आत्मा सूक्ष्म शरीर का अभिमानी चेतन कहो, एक ही बात है. हिरण्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ को जनयमास पूर्वम, पहले सबसे पहले उत्पन्न किसको किया? हिरण्य गर्भ को परमात्मा ने. जो है ना ब्रह्मा जी के, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए ना भगवान के नाभि कमल से, पद्मनाभम. हाँ, नाभि है, नाभि कमल से पहले सृष्टि के आदि में जब भगवान जो है ना, वहाँ नारायण जो है सो रहे थे, खीर खाते थे ना, ससुराल में रहे थे. जमाई ससुराल में रहना इच्छा करता ज्यादा नहीं, क्यों? वहाँ खाने पीने को मिलता है बढ़िया. तो भगवान नाभि, भगवान क्षीर सागर में आदिवास शेष नाग के ऊपर शयन कर रहा था युग निद्रा में. हाँ, तो उनके नाभि कमल से, नाभि से ये ब्रह्मा जी पैदा हुए. ब्रह्मा जी सबसे आदि पुरुष कौन हुआ? ब्रह्मा हुआ. इसी ब्रह्मा को, ब्रह्मा जी को मारने के लिए भगवान के कान के मैल से दो दैत्य उदय हुआ. मधु कैदर नाम के दो दैत्य पैदा हुआ, दोनों आकर के ब्रह्मा जी को खाऊ खाऊ करके मारने के लिए दौड़ा. ब्रह्मा जी डर के मार से भगवान के नाभि का उन्हें छिप गया. जा करके फिर भगवान को जगाया, युग निद्रा से जगाया, क्यों? युग निद्रा में सो रहा था. तो देवी का आह्वान किया, हनी बात, तुम आपने इनका निद्रा से, निद्रा का दूर करो, नहीं तो जाग नहीं रहा, ये तो हमको मारेगा. तो भगवती देवी ने भगवान के शरीर से निद्रा देवी को हटा दिया. तब तो जागा तो सामने देखता है दो दैत्य पहलवान खड़ा हुआ है, क्या राणम दही राणम दही राणम दही कर रहा है. तो उनके साथ लड़ा भगवान ने 10,000 वर्ष तक, एक ने देने 10,000 वर्ष तक युद्ध हुआ. वो युद्ध में भगवान हार गया, जाकर छिप गया कहीं पेड़ के नीचे, जाकर विश्राम करने लगा, छिप गया. फिर जाकर वहां सोचने लगा, ये कौन है, ये राक्षस कौन है, कैसे है, कैसे इसको मारा जाए. तो आकाशवाणी हुई, देवी ने कहा ऐसा ऐसा करो, धुप्ती लगाओ, तब वो मारेगा. हाँ, तो भगवान ने कहा तुम इसको जो है ना बुद्धि को बिगाड़ दो. किसके? मधु कटक के बुद्धि को बिगाड़ दो. हाँ, इसके अंदर वो जो मारने की जो ये है इसको बदल दो. तो क्या करे? उसको कहो हमसे युद्ध से प्रसन्न हो गया, मैं से वरदान मांगे. हाँ, तो उन लोग ढूंढते ढूंढते हुआ आया, कहाँ पर? जहां पर भगवान विष्णु जो है ना विश्राम कर रहे थे. भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे. अरे तू अकेला यहां बैठा, छिप गया है, यहां आकर बैठ गया है. चल लड़ाई लड़ने के लिए. तो भगवान ने कहा भाई तेरे से युद्ध करते करते मैं थक गया, इसे विश्राम कर रहा हूं। अच्छा, तो बाद में फिर लड़ाई हुई। लड़ाई में फिर मधु बेटा ने कहा, भाई तेरे से युद्ध करते करते हम लोग प्रसन्न हो गए, हमारा युद्ध करने का खुजली मिट गया है, अब तू हमसे वरदान मांग। तो भगवान ने कहा, यदि वरदान देना ही चाहता है, मेरे हाथ में तेरी मृत्यु है, वरदान दे। हाँ, उस समय सत्य सुख थे ना, इसीलिए कहा ठीक है, पर हमको ले जाकर के ऐसी जगह में मारना जहां उर्वी शलील न परिप्लुता, पृथ्वी जो है जल से ढकी नहीं हो। तो उस समय तो सारा संसार तो जल से ढका हुआ था, तो कहां ले जाता। तब भगवान ने अपने बाहु या उरु स्थल जांग को बड़ा विस्तार किया, तो उसमें उसको मारा। तो कहने का मधु को जब भाई कौन, क्योंकि उस समय पृथ्वी तक सांप ढकी हुई थी जल से, पानी कैसे मारता। तो जांग को इतना, इसीलिए इसका नाम मेदिनी है, पृथ्वी का नाम है, एक नाम मेदिनी है, मेद से बना हुआ, मेद और मधु के, मधु और कैटब के राक्षस के मेद से बना, इसीलिए इसका नाम मेदिनी पड़ा। मेद है, मेद ये है ना मिट्टी, मेद से बना है, इसलिए इसका नाम मेदिनी पड़ा। अब वहां विचार किया गया, ये मधु कैटब है कौन, ये तो एक रूपक है, रूपक। हाँ, तो मधु होता मिठास, कैटब होता कड़वा, करला। तो मधु माने राग, कैटब माने द्वेष, ये राग द्वेष। तो राग द्वेष रूपी मधु कैटब पैदा कहां से हुआ, भगवान के विष्णु के कान से। आने बात आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक। आदिदेविक मधु कैटब तो मर गया, परंतु आध्यात्मिक मधु कैटब अभी भी जिंदा है। ये कौन है, ये राग द्वेष। हम जो अपने निंदा स्तुति सुनते हैं ना, तो जहां निंदा स्तुति श्रवण करते हैं, तो स्तुति सुनने वाला से राग होता है और निंदा सुनने वाला के प्रति द्वेष होता है। तो राग द्वेष तो अभी भी है, ये तो मरा नहीं, मधु कैटब तो है, ये आध्यात्मिक आयो। तो आदिदेव तो मर गया था, तो आदिदेव मरने के बाद में भगवान विष्णु ने वो दोनों को अपने पार्षद बनाया। वही पार्षद जो है ना भगवान के दरबार में रहते थे, नाम है जय और विजय। पर वो जय विजय को भी वहां अभिमान हो गया था, भगवान के दरबार में रहते रहते उनके अंदर अभिमान आ गया था, समझे कि नहीं, कि हम भगवान विष्णु के पार्षद है। देखो हमारे यहां कहते ना मंडलेश्वरों के पास में रहने वाले, समझे कि नहीं, मंडलेश्वर के पास में रहने वाले का अभिमान होता है कि नहीं, मैं मंडलेश्वर के रहूं, किसी से पूछे भी ना मेरे का अंदर नहीं जाना। हाँ, कोई खड़ा रहता देता नहीं। तो ऐसे बड़ों के सेवा में जो रहता है ना, वो बड़ों से भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। तो ऐसे ही मधु कैटब को अर्थात जय विजय को हुआ था। तो भगवान ने सोचता रहा, इसको कहां यहां से हटाया कैसे जाए, क्यों दोष लगाए बिना हटाया नहीं जाता है। तो आश्रम से भी किसी महात्मा को हटाना होगा तो क्या करना पड़ता है, उसके पीछे दोष लगाना पड़ता है, तुमने ही गलती किया, ही गलती कर तो, ही गलती कर तो जा, थोड़ा दिन घूमे आओ, निकाल दिया। तो ऐसे ही भगवान ने सोचा दोनों को हटाए कैसे जाए, तो दोष आरोप करना पड़ेगा। दोष आरोप करने के लिए भी कोई ना कोई निमित्त चाहिए, बिना निमित्त से दोष लगाए कैसे जाए। तब भगवान ने स्मरण किया, किसको, सनक सनंदन सनातन कुमार को, उन लोगों को बुलाया, मानसिक वैसे नहीं बुलाया, मानसिक वृत्ति से उनको बुला गया, फिर उनको निमित्त बनाया, तब मधु कैटब को वहां से हटाया। ये मधु और कैटब क्या है, राक्षस है। ये मधु कैटब क्या हुआ, हमारे जीवन में राग और द्वेष। तो विद्यनम वैरिनम एटा उसका है ना काम और क्रोध काम। अर्जुन ने पूछा था ना अथक न प्रयुक्त पापम सरति पुरुष अनिच्छन अभिवासन बलादीव नियोजित। भगवान ने काम ऐसा क्रोध ऐसा रजगुण समुद्र महासन महापापमा विद्यनम वैरिनम ये दोनों भैरी है शत्रु है आध्यात्मिक रास्ता में चलने वाला के लिए। ये काम और क्रोध काम क्रोध और एक है लोभ। ये त्रिविधम नरकेश्वर द्वारा नाशनम आत्मा न काम क्रोध सलोभ तस्मात त्रयम तेज। ये काम क्रोध लोभ जो है ना ये तीनों क्या है नरक का द्वार है तो जाकर आखिर में बताया। ये तीनों तस्मा देता त्रयम त्रजित ये तीनों को छोड़ दो नरक जाने से बचना हो मोक्ष दर है द्वारपाला चतवारा परिकीर्तिता। मोक्ष के द्वार में चार द्वारपाल है याद रखना। मोक्ष रूपी जो भवन है ना वशिष्ठ जी राम जी से कहते हैं हे राम जी मोक्ष के द्वार में चार द्वारपाल है ये चारों में से किसी को एक को खुश करना होगा तब मोक्ष रूपी भवन में प्रवेश कर सकते हो। हाँ हाँ जैसे आप नेपाल गए ना नेपाल नेपाल गए कि नहीं पशुपतिनाथ उसका चार मुख नहीं चार दरवाजा है मंदिर में जाने के लिए तो वहाँ पंडा बैठते हैं ना तो उसको पैसा देते हैं ना खुश करते हो कि नहीं तब वो उस दरवाजे से घुसने देगा तो जिस दरवाजे पर जो बैठा है उसको खुश करना पड़ता है तो तुमको अंदर जाने देगा नहीं तो नहीं देगा। समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम सम विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम मोक्ष द्वारे द्वारपाल चत्वार परिकीर्त समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम ये चारों को खोज करना पड़ता है समझे कि नहीं। सबसे पहले कौन है सम तो विचार संतोष ये साधु संगम। हाँ हाँ वो तो करो तो फिर मोक्ष का द्वार खुला है। सदा विचार है तस्मा जगह जीव पर आत्मा न सदा विचार जीव क्या जगत क्या है परमात्मा क्या है जीव जगत परमात्मा तीनों में से बात करते चले जाओ जीव पना चला जाएगा जगत पना चला जाएगा कि परमात्मा शेष रहेगा। वो परमात्मा कौन है क्या शेष रहने से काम नहीं चलेगा है नहीं बात। वो परमात्मा मैं ही हूं ऐसा निश्चय करना दृढ़ता होना ब्रह्म है वह हम समझ शांत यहां तक आना पड़ेगा तुमको विचार करो सदा। नौत्पद्य से बिना ज्ञान विचारे न अन्य साधन ही भाष्यकार कहते हैं नौ उत्पद्य से बिना ज्ञानम विचारे न अन्य साधन है बिना विचार से अन्य साधन से कर्म से उपासना से आदि से योग से तुम्हारा ज्ञान उत्पन्न होने वाला नहीं है। अन्य साधन है अन्य साधन माने कर्म उपासना योग आदि जितना भी है ना उससे तुम्हारा ज्ञान होने वाला नहीं है। ज्ञान होगा कैसे विचार से सदा विचार है इसलिए हमेशा विचार करते रहो जीव क्या जगत क्या परमात्मा क्या है अन्य बात तो जीव भाव जगत भाव बाद हो जाएगा। हाँ बात का मतलब क्या समझे बात का मतलब होता है मिथ्यात्व का निश्चय अन्य बात जगत जीव दोनों के दोनों क्या है मिथ्या। क्यों बात का कहोगे तो सुसुप्ति अवस्था में जीव भी बाधित हो जाता है जगत भी बाधित हो जाता है तो मोक्ष मिल जाना चाहिए ना। हाँ तो मिलता क्यों नहीं वहां बात तो हो गया परंतु मिथ्यात्व का निश्चय हुआ नहीं होता। मिथ्यात्व का निश्चय जागृत अवस्था में ही होगा। ये वस्तु मिथ्या है जीव मिथ्या है जगत मिथ्या है संसार मिथ्या है इसका निश्चय करना पड़ेगा। तो इसका निश्चय कैसे होगा अधिष्ठान के ज्ञान से अध्यस्त वस्तु का मिथ्यात्व का निश्चय होता है। जब तक अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान का ज्ञान नहीं होगा तो अध्यस्त वस्तु के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होगा। सर्प के रस्सी के ज्ञान से ही सर्प मिथ्या है सुक्ति के ज्ञान से ही चांद मिथ्या है मरुभूमि के जल से ही मरुभूमि का जल मिथ्या है आकाश के ज्ञान से आकाश में नीलिमा मिथ्या ही तब होगा जब अधिष्ठान का ज्ञान हो जाएगा। इससे पहले मिथ्यात्व का निश्चय नहीं होता। तो मिथ्यात्व का निश्चय करोगे उसी का नाम है ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के बिना अज्ञान की निवृत्ति नहीं, अविद्या की निवृत्ति भी बिना मोक्ष नहीं है। अविद्या निवृत्ति मोक्ष चार क्या विषम सत्ता में थोड़ी होगा। जागृत में सपना में आपको भूख लग गया, जागृत में खाने आओगे क्या करोगे? सपना में खाओगे या नहीं खाओगे? जागृत में दुश्मन आया तुम सपना में चले जाओगे उसको मारने के लिए? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः।